और जिसको हवा होती है, सवारी आती है, ऐसे लोग भी जब मंत्र दीक्षा लेकर जप करते तो हवा और सवारी छू हो जाती। तो मंत्र जाप में बड़ी शक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप हो और मंत्र में दृढ़ विश्वास हो, विश्वास रहित मंत्र का लाभ उतना नहीं होता। और भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, लेकिन अभागा कलयुग गुरु में श्रद्धा नहीं करने देता है। क्योंकि भगवान तो मूर्ति है, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ घड़ाई नहीं होगी। और गुरु तो बोलेंगे भी, घड़ाई भी करेंगे। तो भगवान की मूर्ति में तो श्रद्धा हो जाती है, पत्थर की मूर्ति में, तांबे पीतल की मूर्ति में तो श्रद्धा हो जाती है, लेकिन चलती फिरती सद्गुरु रूपी मूर्ति में जब श्रद्धा अटूट हो तब शिष्य का दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। तुलसीदास ने कहा, गुरु बिन भवन निधि तरह ही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कल बताया था ना, जाओ डेंडे जपो, और दृढ़ता से लग गया तो डेंडे भी उसके लिए तो तारणहार मंत्र बन गया। तो कुछ लोग गुरु मंत्र ले गए, फिर बोलेंगे बाबा जी ये गुरु मंत्र है, लेकिन मैं फलाना जप सकता हूँ, पहले जपता था। अरे पहले जपता था तो क्या तूने झक मारा? अब जरे तेरे को जेट विमान मिल गया तो बोले लोकल में लटकता रहूँ, तो लटकता रहा थोड़ा लोकल में भी। तो ये मंत्र में और गुरु वचन में दृढ़ श्रद्धा हो तो शिवाजी जैसे को देखो, जंगल की शेरनी दूध दोने देती है। शेरनी दूध कैसे दोने देती? समर्थ रामदास की प्रति उनकी आस्था है। घोड़ी कैसे किला कूदती है? अभी कांग्रेस की घोड़ी या भाजपा की घोड़ी नहीं कूद सकती, और शिवाजी की घोड़ी किला कूद गई। समर्थ रामदास में उसकी आस्था थी, रामदास की कृपा ने घोड़ी को किला कूदवा दिया। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो एक कलयुग मूर्ति में तो श्रद्धा करने देगा, क्योंकि मूर्ति तुम्हारे को श्राप क्यों छुड़ाती? मूर्ति बीड़ी नहीं छुड़ाती, मूर्ति तुमसे पाप नहीं छुड़ाएगी बोलकर, इसलिए मूर्ति में आस्था हो जाती है। लेकिन गुरु तो डांटेंगे, पाप छुड़ाएंगे, गुरु संकेत करेंगे। मंत्र दीक्षा लिया और कोई बुरा काम करोगे तो मंत्र दीक्षा के दिन ही गुरु के साथ तुम्हारी एक जैसे एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज के साथ लाइन जुड़ जाती है टेलीफोन के डिब्बे की, ऐसे ही सदगुरु रूपी एक्सचेंज के साथ लाइन जुड़ जाती है। तो कभी कुछ ऐसा काम करेंगे तो महसूस होगा कि गुरु नाराज है, और प्रणाम करने गए तो भी गुरु की आँख जरा ऐसे गर्म देखेंगे तो फिर श्रद्धा गड़बड़ होगी, क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो गुरु में ईश्वर गुरु ये दो मूर्ति दिखती है अलग अलग, लेकिन ब्रह्म तत्व एक ही है। ईश्वरो गुरु रात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो, व्योमवत व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरुवे नमः। ईश्वर और गुरु मूर्ति भिन्न दिखता है, लेकिन वास्तव में वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा एक ही स्वरूप है। चरण दास गुरु कृपा कीनी उलट गई मेरी नैन पुतरिया, गुरु की कृपा हुई तब नैन पुतरिया मतलब देखने की दृष्टि, सोचने की दृष्टि मेरी बदल गई। जो देह को मैं मानते थे, संसार को सच्चा मानते थे और जन्म मरण के चक्कर में घसीटे जाते थे, वो अब अजन्मा आत्मा के तरफ झुकाव हो गया है। तो चरण दास एक बड़े उच्च कोटि के संत हो गए। उनका वचन है, चरण दास गुरु कृपा कीनी उलट गई मेरी नैन पुतरिया। गुरु की कृपा के बिना आदमी की दृष्टि नहीं बदलती। व्यवहारिक दृष्टि तो सबके पास है, मन दृष्टि और आत्मदृष्टि, ये दो दृष्टि गुरु की कृपा से ही आती है। तो व्यवहारिक दृष्टि का भी रोग शोक आसक्ति नहीं होती। गुरु मिले तब गुरु से ये ज्ञान सीख लेना चाहिए कि गुरु जी संयम में कैसे आगे बढ़े। गुरु बोलेंगे यौन सुरक्षा पढ़ा करो, गुरुजी सुख दुख में सम कैसे रहें। गुरुजी सत्संग सुनाते हैं उसमें बताते हैं। गुरुजी क्रोध के समय क्षमा के गुण को कैसे विकसित करें और क्रोध के समय जलते हुए हृदय की रक्षा कैसे करें, ये सीखना चाहिए गुरुओं के पास। गुरुजी अहिंसा वृत्ति कैसे लाएं, गुरुजी अहंकार विलय कैसे हो, गुरु भक्ति कैसे दृढ़ हो। गुरुजी कहेंगे गुरु गीता पढ़ा करो। अहंकार विलय कैसे हो कि अपने से बड़ों की निगाह में रहो, जो ज्ञान में ध्यान में सद्गुणों में भक्ति में ईश्वर के जगत में आगे हैं उनके संपर्क में रहो। अपने से पुराने गुरु भाई, और गुरु भाई तो पुराने हो लेकिन लाच रुश्वत लेते हो खूब, नाम कहें कि मैं गुरु का हूं लेकिन अंदर में ठन ठन पाल हो, तो ये कोई पुराने गुरु भाई का लक्षण नहीं है। घूस खूब खाते हो और मौका आके यश के समय गुरु के आगे खड़े हो जाए, तो ये पुराने गुरु भाई का लक्षण नहीं है। पुराना गुरु भाई का लक्षण यह है कि जो सत्संग में साधन भजन में सेवा में पुराना हो, तत्परता से करता हो, गुरु भक्ति में दृढ़ हो, तो ऐसे लोगों का संग करने से गुरु भक्ति सेवा अहिंसा सद्गुण बढ़ते हैं। गुरु मंत्र का अधिक जप करने से ध्यान करने से सद्गुण बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की योग्यताएं बढ़ाकर दैवी योग्यता ही तुम्हारी संपदा है। हकीकत में आध्यात्मिक धन ही तुम्हारा धन है। यहाँ का धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा, यहाँ का मकान तो तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। उसको संभाल संभाल कर बुहारी लगाकर चूना चपोटा करके रंग रोगन करते करते मर जाएंगे, फिर भी यहाँ का मकान साथ में नहीं चलेगा। एक नंबर दो नंबर इनकम टैक्स भर भरा के करते कराते आखिर ये धन सब यहीं छोड़ जाएंगे, साथ में नहीं चलेगा। ऐसे यहाँ के मित्र भी साथ में नहीं चलेंगे, लेकिन परम मित्र जो परमात्मा है और उसका जो मंत्र मिल गया है, उससे जो कमाई किया वो अपने साथ चलेगी, सदाचार साथ चलेगा, सद्गुण का भंडारा साथ चलेगा, और गुरु कृपा तो मौत के समय भी हमारी रक्षा करके अमरता के तरफ ले जाती है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, इससे परम मंगल होता है। गुरु कृपा ऐसी चीज है। दूसरे तीन नियम पक्के कर लेने चाहिए कि गुरु मंत्र ले रहे हैं अब से मांस आहार नहीं करेंगे, अगर कोई करता है तो मांस छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे, सिगरेट बीड़ी छोड़ देंगे, और तीन नियम ले लेंगे कि गुरु गीता का पाठ, 10 मालाओं का जप, 10 प्राणायाम, 10 माला का जप और गुरु गीता का पाठ रोज करेंगे। यौन सुरक्षा पुस्तक हफ्ते में 2-3 बार जरूर पढ़ेंगे। जीवन रसायन पुस्तक अगर स्टॉल पर होगी, नहीं शायद, हो तो ले लेना, साथ में रखना। जब भी मन इधर उधर जाए थोड़ा पढ़ा और उसी विचारों में लगे, इससे बहुत फायदा होता है। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक होते हैं अधम, गुरु कहे फिर भी टालम टोल करे और दूसरे पर काम सौंप दे, गुरु का संकेत न समझे और संकेत समझे तभी भी टालम टोल करे, छटकबारी, दिखावटी सेवा करे, उनको अधम शिष्य कहा जाता है। दूसरे होते हैं मध्यम, गुरु के संकेत को समझ के गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपना जीवन उसी प्रकार करे और गुरु सेवा में लगे, वो मध्यम शिष्य होते हैं। और उत्तम शिष्य होते हैं हनुमान जी जैसे, गुरु की सेवा खोज लेते हैं। भगवान राम का राज्य हुआ, सीता, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इन्होंने मिलकर राम जी की सेवा आपस में बांट ली। हनुमान ने बहुत सेवा की, अब हम सेवा का फायदा उठाएं। इन्होंने बांट ली सेवा। हाय हनुमान जी पंखा हाँकने, भरत भैया बोलता है हनुमान ये सेवा मेरे जिम्मे है। आए हनुमान जी प्रभु की गादी बादी ठीक ठाक करने। लक्ष्मण कहता है कि हनुमान ये मेरे जिम्मे की, भोजन परोसने की और थाली उठाने की सीता जी बोलती है मेरी सेवा। कुल मिला के जो भी सेवा होती थी सुबह से लेकर रात्रि तक की इन्होंने स्मृति करके एक पूरा चार्ट बनाकर राम जी से सम्मति ले ली थी। अब किसी भी सेवा में हनुमान हाथ नहीं बढ़ा सकते, हनुमान सेवा किए बिना रहे नहीं। हनुमान जी तो विवल हो गए कि प्रभु मेरी मेरे लिए कोई सेवा नहीं बची, मैं क्या करूं, मैं नहीं जी सकता बिना सेवा के, और इन्होंने तो आपसे वचन ले लिया है। तो राम जी ने कहा इन्होंने जो भी सेवाएं याद करके लिखी है और मेरे से सही करा ली है तो वो सेवा तो इनके जिम्मे, लेकिन जो ये सेवा इनको याद नहीं रही हो और बाकी रह गई वो तुम ढूंढ के कर लिया करो। तो हनुमान जी ढूंढते 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 देखे तो सब सेवा इन्होंने तो एक छोटी से छोटी सेवा भी है ना, कोई आया है उसकी खबर बताने का काम की सेवा भी शत्रुघ्न ने ले ली है। ऐसी कोई सेवा नहीं जो हनुमान खोज ले, फिर भी उत्तम सेवक थे हनुमान, उन्होंने सेवा खोज ली कि प्रभु को जब जवाई आवे आह करे तो चुटकी बजाने की सेवा इन्होंने नहीं लिखी जय राम जी की। उत्तम सेवक है सेवा खोज लेता है, चुटकी बजाने की सेवा नहीं खोज। तो हनुमान जी तो सामने बैठ गए, क्या पता कब ठाकुर जी को जवाई आ जाए, बगाना चुटकी बजाऊं तो दिन भर दर्शन और चौकीदारी मिल जाए, सिक्योरिटी भी हो गई उनकी तो साथ साथ में। रात हुई माता जी चरण चंपी करने, प्रभु जी के चरण चंपी करने गए। अब माता जी के समक्ष हनुमान जी को बैठना मर्यादा के विरुद्ध है, हनुमान जी खिसक गए, छत पे चले गए। सोचा कि प्रभु दिन को तो बगासा आए एक दो बार, लेकिन रात को तो जवाइयां आती ही है, जब माता जी पैर चंपी करती होगी तो ये तो स्वाभाविक है, ठाकुर किसी वक्त भी उनको जवाई आ सकती है, बगासा आ सकता है, तो अब क्या करूं। तो हनुमान ने चुटकी बजाना चालू कर दिया छत पर, कभी भी हो सकती है उनको जवाई। तो ठाकुर जी का मुंह खुला रह गया, सीता बोलती क्या बात है, मुंह बंद नहीं करते। अब मुंह बंद हो तो बताए ना क्या बात है, अब मुंह तब बंद होगा जब सेवक चुटकी बजाना बंद करे। सीता घबराई, नाथ नाथ स्वामी प्रभु प्रभु, लेकिन स्वामी तो सेवक के सेवक हैं, ऐसे उत्तम सेवक के तो गुरु भी सेवक हो जाते हैं। उत्तम सेवक पर तो गुरु जी अपना सर्वस्व देके चले जाते हैं, अधम सेवक को मध्यम बनाते हैं, और मध्यम सेवक अगर उत्तम नहीं बनता है तो फिर उसको मध्यम लाभ रहेगा, और जो सेवक तो कहलाते हैं लेकिन सेवा नहीं, जरा सा गुरु ने कहा तो दुख हो जाए, जरा सा गुरु ने कहा तो मेरे को ये पूछना है, मेरे को ये करना है, मेरे को खुलासा करना है, तो वो तो अधम सेवक भी नहीं है, वो तो भाड़ूती आदमी है। गुरु की कोई भी बात छोटी मोटी बात अगर चुभ जाती है और दुख देती है तो वो तो सेवक नहीं है, न अधम सेवक है, न मध्यम सेवक है, न उत्तम सेवक है, वो तो किराएदार आदमी है। तो वो किराएदार आदमी ऐसा कहके भी गुरु उसको सेवक बनाकर कल्याण करना चाहते हैं। तो गुरु कृपा से क्या क्या होता है अभी निगुरा आदमी को पता ही नहीं। भगवान राम के गुरु थे, भगवान कृष्ण के गुरु थे, और भगवान कृष्ण गुरु के लिए लकड़ियां करके आते थे। जग गुरु से पहले जगपति जागे, गुरु शयन करे फिर जाकर राम जी शयन करते थे, और गुरु जी जगे उसके पहले राम जी दातुन लेके तैयार रहते थे। ऐसे भगवान राम चतुर्भुजी नारायण में से भगवान राम हुए, इतने महान फिर भी गुरु के आगे कैसे दास होकर रहते। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूढ़ पिछाने, अपने मनमाना तो सब लोग सेवा कर लेते हैं, लेकिन जो गुरु बताए वो मधुर लगने लगे वो मधुर सेवक हो जाता है। मन भावन काम तो कुत्ता भी कर लेता है, तुम कार दौड़ाते हो सड़क पर तो कुत्ता भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए दौड़ लेता है, वो तो उसके मनमाना काम है। तो मनमाना काम तो कुत्ता भी ढूंढ लेता है, कुत्ता भी कर लेता है, लेकिन ठाकुर जी को अच्छा लगे ऐसा सेवक तो हनुमान है। और भी जो हैं उनको शाबाश है। अब कौशल्या आई, सुमित्रा आई, कैकेयी आई, कुछ नहीं। सुमन को बुलाया गया मध्य रात को, भाई राजाधिराज अन्नदाता को ये हो गया तो मंत्री का क्या हाल होगा, मंत्री परेशान, ये वो। आखिर देखा कोई हकीम डॉक्टर का कोई चारा नहीं, आखिर रथ भेजा गया गुरु वशिष्ठ को अनुनय विनय करके कि आपके सेवक श्री रामचंद्र जी जवाई खाकर मुंह खुला ही रह गया है, हकीम डॉक्टरों को कोई पता ही नहीं चलता है, माताजियां भी बड़े दुखी हैं और मां सीते भी विवल हैं। वशिष्ठ आए, वशिष्ठ तो ज्ञानी ठहरे, सदगुरु ठहरे। वशिष्ठ ने चारों बाजू नजर घुमाई। अब राम जी का बगासा देख कर, बगासा एक ऐसा है कि किसी को देखा तो अपने को आने लग जाएगा, झूठ मूठ में मैं करूंगा तो आपको भी चालू हो सकता है। तो राम जी का वशिष्ठ ने देखा कि राम जी का बगासा ऐसा पक्का है कि दूसरे लोग भी बगासे खा रहे हैं, लेकिन वो राम जी के सेवक हनुमान नहीं दिखते। देखो कहां महापुरुष का चित्त पहुंच जाता है फटाक से, जहां गलती होती वहीं उनके चित्त में स्पंदन आता है। कई डॉक्टर, कई लोग बोलते डॉक्टर को रोग पता नहीं चलता है, डॉक्टर बोलते दो महीने में मर जाओगे, और संत बोलते नहीं रोग पता क्या नहीं चलता, तुम ऐसा ऐसा करो, तो मेन पॉइंट उनके हृदय में भगवत कृपा से प्रकट हो जाती। तो वशिष्ठ के अंतःकरण में प्रकट हो गया कि हनुमान नहीं दिखाई देते। हनुमान जहां भी हो, हवाएं सुन ले, दिशाएं सुन ले, आकाश सुन ले, यक्ष किन्नर देव दानव सुन ले, राम जी के सेवक हनुमान जी जहां हो वहां से आ जाएं। हनुमान जी तो छत पर ही थे, जरा जय श्री राम करके जंप मार दिया। तो जंप मारते समय वो चुटकी बजाना छूट गई, चुटकी बजाना छूट गई तो प्रभु का मुंह खुलना भी छूट गया, जैसा था वैसा पोजीशन में आ गया। फिर बोले कि पूछा कि ऐसा क्या हो गया था, बोले सेवक ने चुटकी बजाना चालू रखा तो फिर मैं जिवाई भी तो चालू रखूं, मैं मुख कैसे बंद कर सकता हूं। वो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सीता जी ने सबने अपनी सेवा यथा योग्य काट कूट के थोड़ी रही, बाकी भैया हनुमान तुम्हारी सेवा पहले बाद में हमारी। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। ये उत्तम सेवक हैं, स्वामी से भी ज्यादा उनकी महिमा हो जाती है। नरेंद्र ऐसे उत्तम सेवक थे, शिवाजी ऐसे उत्तम सेवक थे, कीड़ी के पग नेवर वाजे वो भी साहेब सुनत है। सेवा करके गिनाओ मत, सेवा करके दिखाओ मत, सेवा करके अपने अहंकार को और पाप को विलय करके अपने आप को गुरुमय करते जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। तो संकेत से अथवा हनुमान की नाई सेवा खोजने वाले उत्तम शिष्य होते हैं, दूसरे मध्यम होते हैं, तीसरे कनिष्ठ होते हैं। उत्तम सेवक गुरु के दर्शन मात्र से शांत चित्त प्रसन्न चित्त होने लगेगा और उनकी शंकाओं का समाधान होने लगेगा। मध्यम सेवक पूछ पूछ कर शंका समाधान करेगा, कनिष्ठ सेवक तर्क करेगा और ये ठीक है कि वो ठीक है, अथवा तो ये मंत्र करूं कि वो मंत्र करूं, गुरुजी को ये करूं। तो कनिष्ठ जो होता है वो थर्ड क्लास सेवक, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो उसको लाभ भी होता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। गुरुजी 10 साल हो गए हमने मंत्र लिया, अब कोई अनुभव हुआ कि पहले तो बहुत आनंद आता था, शिविर में थे तो बहुत आनंद आता था, लेकिन गुरुजी घर में आनंद ऐसा नहीं रहा। तो शिविर का साधकों के हाथ से भोजन बना, सात्विक भोजन मिला, शिविर के माहौल में रहे और गुरु की निगाहों में रहे, मन की बदमाशी नहीं होने दिया तो बहुत आनंद रहा। घर में गए तो जैसा तैसा, मासिक धर्म में कोई है उसने भोजन बनाया तो तेरी भक्ति डाउन हो गई, अथवा तो जैसा तैसा भोजन खा लिया, जैसा तैसा बिस्तर पर सो गए, जैसे तैसे व्यक्तियों से हाथ मिला लिया और मंत्र छोड़ दिया। बोले हाँ गुरुजी, मंत्र तो कभी छूट जाता है, तो तू अधम सेवक है। उत्तम सेवक है कि गुरु ने दिया उसको बढ़ाए, मध्यम सेवक है गुरु ने जो योग्यता दी उसको संभाल के रखे, धीरे धीरे बढ़े। और कनिष्ठ सेवक वो है कि योग्यता मिलती है फिर डाउन, फिर पुश करा के जाए एक आध शिविर में, फिर डाउन, फिर थोड़ा ऊपर उठे फिर डाउन, ऐसे बैटरी रिचार्ज करे फिर डाउन, रिचार्ज करे फिर डाउन, ऐसे करते करते बैटरी खत्म हो जाती, जीवन खत्म हो जाता है। तो ये सब सत्संग में जब बातें आती है तो अपने को सावधान होने के लिए आती है, अपने को उत्तम सेवक तक पहुंचाने के लिए आती है। शिष्य का पहला लक्षण है श्रद्धालु हो। श्रद्धाहीन आदमी तो पशु से भी बदतर है, लेकिन श्रद्धालु और श्रद्धालु की पहचान है कि वो गुरु ने दिए हुए साधन में उसकी तत्परता होगी और पहले की अपेक्षा उसमें पाप ताप कम होने लगे तो वो श्रद्धालु है। और पाप ताप वही करता है, दुराचार वही करता है, उससे भी बढ़कर करता है, तो वो श्रद्धालु नहीं, वो तो ढोंगी शिष्य है। कहलाने के लिए नामदान ले लिया, एक सिंबल ले लिया, इतने बड़े समर्थ गुरु का शिष्य हूं ऐसा कहलाने के लिए उसने कर लिया, लेकिन वो श्रद्धालु नहीं है। श्रद्धालु की पहचान है कि गुरु मंत्र के बाद उसको ध्यान भजन में मन लग गए, गुरु मंत्र के बाद वो अपना नियम करता रहे, गुरु मंत्र मिलने के बाद उसके दोष कम हो, तो ये श्रद्धालु शिष्य है। अगर श्रद्धा है तो तत्परता भी है, श्रद्धा है तो संयम भी आएगा, अगर श्रद्धा नहीं है तो संयम भी नहीं आएगा, तत्परता भी नहीं आएगी। तो भगवान में श्रद्धा हो जाना तो आसान है। और पिछले 40 साल से मस्जिद में जाते हैं, 40 साल से मंदिर में जाते हैं, लेकिन स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, तो मस्जिद और मंदिर में भी ठीक है, जाने को जाते, बाकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है। तो भगवान में या खुदा में श्रद्धा हो तो आदमी खलकत में अपने मालिक को देखेगा, तलवारें लेके किसी की कत्ल करने की बेवकूफी नहीं करेगा। अगर ईश्वर में अल्लाह में श्रद्धा है तो ला इल्ला इल्लल्लाह, सब में वो मालिक है, जब सब में मालिक है तो मूर्ख तलवार लेकर क्यों खुलेआम कत्लाम करने को निकल पड़ते। सब में मालिक है तो फिर सब में भगवान है तो एक दूसरे को क्यों कत्ल करना। तो जब भगवान में या मालिक में श्रद्धा होगी तो उस आदमी की हिंसा क्षीण होती जाएगी, अहिंसक स्वभाव बनेगा, कायरता दूर होती जाएगी, निर्भीक होगा, स्पष्टवादी होगा, बुद्धिमान बुद्धिमत्ता से स्पष्ट बोलेगा। ऐसा नहीं स्पष्ट बोले और किसी का दिल जलाने वाला स्पष्ट बोले, नहीं, किसी के दिल का दिल को चोट लगे ऐसा सत्य नहीं। सतगुरु भी सत्य बोलते हैं तो उसकी दिल को चोट नहीं, लेकिन उसकी दिल को एक दिशा मिल जाए। अब खामखा कोई चोट लगा दे तो उसकी बेवकूफी है, लेकिन अपनी ओर से किसी के दिल को दुख न हो ऐसा ख्याल रख के फिर सत्य बोला जाता है। सत्य हो, हितकर हो, मधुर हो, उसका जीवन कल्याणकारी हो, इसलिए गुरु बोलते हैं। फिर चाहे वशिष्ठ जी गुस्सा करके भी बोलते हैं कि सीता जी गहने पहन के जाएगी, अब राम जी वलकल पहन के जा रहे नंगे पैर और सीता महारानी हो के जाए, ये व्यवहार में तो अच्छा नहीं लगता, ये कैसा ठीक। पतिव्रता है सीता और पति तपस्वी वेश में और पत्नी महारानी के वेश में, व्यवहार में तो शोभा नहीं देता है। बोले व्यवहार व्यवहार में शोभा नहीं देता, मेरी आज्ञा है सीता गहने पहन के ही जाएगी, वनवास राम को मिला है न कि सीता को मिला है। तो बाबा जी ये गृहस्थी जीवन में क्यों डिस्टर्ब करते होंगे, कुछ मूर्खों ने तो ऐसा बका, लेकिन वशिष्ठ जी ने को जो सहज स्वभाव पूर्ण हुआ उसमें कितना रहस्य था। सीता अगर गहने पहन के नहीं जाती तो रावण सीता का हरण करके जाता, तो सीता ने गहने फेंके ताकि सीता कौन सी दिशा में गई वो पता चला, और फिर वो अंगूठी भी राम जी को मिली कि ये सीता की है, और इसी से सीता जी को पाने में भी सुविधा हुई। वशिष्ठ जो बोलते हैं उसके पीछे कितना रहस्य छुपा है ये मूर्खों को बाद में पता आता, गुरु जो बोलते हैं उसमें कितनी कृपा छुपी होती है। गुरु जो नाराज होकर जरा डांटते भी हैं तो उसमें कितना भविष्य में उज्जवल और प्रकाश छुपा होता है ये बाद में पता चला मूर्खों को। उस समय तो लोग वशिष्ठ के लिए निंदा करने लगे, तो मूर्ख आदमी वशिष्ठ की निंदा कर ले इसलिए वशिष्ठ जी छोटे नहीं हो जाते हैं। वशिष्ठ जी तो अपनी महिमा में है ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी ऐसी जगह पे पहुंचा है कि लाखों आदमी उनकी प्रशंसा करें फिर भी वो अपने में अहंकार नहीं आता उनको, और लाखों आदमी निंदा करे तभी भी उनके चित्त में विषाद नहीं होता है। वो ब्रह्मज्ञानी की प्रशंसा करके लोग अपना हृदय पावन कर लेते और निंदा करके अपने को और अपने पीढ़ियों को नरक में ले जाते हैं। ज्ञानी तो निर्लेप रहता है।